તારીખ 7/5/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 481
નંબર પત્ર કા વિષય અવસાન કે પરિભ્રમણ કી ચિંતના કે વિચાર વિકલ્પ કેસો હોતો હૈ યહાં સે પત્ર કા પ્રારંભ હુઆ હૈ ઇસકો યથાર્થ રૂપ સે ભૂતકાળ કે પરિભ્રમણ કા સ્મરણ આતા હૈ उसको भविष्य में ऐसा परिभ्रमण हमारा न हो उस प्रकार के परिणाम होते हैं। भूतकाल में हमने बहुत परिभ्रमण किया, बहुत दुख भोगे तो स्मरण आते ही वर्तमान उदय भाव रूप जीवन में वर्तमान जीवन क्या है उदय भाव रूप है उसमें जीव को चिंतना के फल स्वरूप वैराग्य आता है, बहुत वैराग्य आता है। और भविष्य के लिए ऐसा परिभ्रमण न हो ऐसा विचार आता है, मात्र विचार आता है उतना ही नहीं दृढ़ रूप से दृढ़ता से ऐसा विचार आता है। वो दृढ़ता कैसी होती है? भविष्य में परिभ्रमण न हो इसके लिए किस प्रकार की दृढ़ता होती है? तो दृढ़ता का स्वरूप क्या है? ठीक यही बात अधिक क्या करना, जो जो पूर्व में माने भूतकाल में भावांतर में मैंने अनेक प्रकार के भव भावांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, किस कारण से भ्रमण किया? भ्रांति के कारण भ्रमण किया, अपने स्वरूप में अपने रूप अपने ही विषय में भ्रांति हुई। जैसा अपना आत्मस्वरूप है वैसा आत्मस्वरूप नहीं स्वीकार करके जाने में करके अपने को अन्यथा मानने लगे, जानने लगे और प्रवृत्ति करने लगे। पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना यह चिंतना हो, अब क्या करना चाहिए मुझे, कैसे मेरा जीवन बिताना चाहिए कि जिससे आगामी काल में भविष्य काल में ऐसा मुझे भव भ्रमण करना न पड़े, उसकी यदि चिंता हो पड़ी है। अब मुझे मेरे संयोग वियोग की चिंता नहीं है, क्या इष्ट संयोग मिले अनिष्ट संयोग नहीं मिले खराब हो जाए ऐसी चिंता नहीं है। अब तो मुझे जन्म मरण नहीं हुए इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए इसकी चिंता हो पड़ी है। और उस चिंता के फल स्वरूप फिर जन्म लेना ही नहीं और फिर जन्म मरण हुए ऐसा करना ही नहीं, ऐसा ब्रह्मत्व आत्मा में प्रकाशित होता है, ऐसा ब्रह्मत्व राग द्वेष में प्रकाशित नहीं होता है। क्या लिखा है? आत्मा से दृढ़ता आती है कि अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है, और जन्म मरण मेरा हो ऐसा कोई परिणाम मुझे नहीं करना है। जन्म मरण कहां से होता है? दिवाग नाश से होता है। किस कारण से जन्म मरण होता है? देहाभ्यास, देह में अपनत्व रखते हैं, उस परिणाम से बार बार नए नए देह की प्राप्ति होती है। वर्तमान देह में अपनत्व एकत्व होता है, उसको अभ्यास करते हैं, और इसका फलस्वरूप नया देह मिलता है। जैसे मृत्यु वैसे गति। देह में आत्मबुद्धि है तो देह नया नया मिलता रहेगा, जहां तक देह में आत्मबुद्धि हो वहां तक। देहात्मबुद्धि को देहाभ्यास करने में आता है। उपचार करो या मत करो, अपनत्व का मत करो। क्या उपचार नहीं करो तो अपनत्व छोड़ करके, और करो तो भी अपनत्व छोड़ करके। मतलब क्या है? देह में अपनत्व मत करो। देह का उपचार मैं कर सकता नहीं, कर सकता है जी? देह में रोग होने से देह का उपचार जीव कर सकता है? कर नहीं सकता। तो फिर जीव क्या करता है कि उपचार करने का विकल्प करता है। वो विकल्प दो प्रकार से आता है, एक अपनत्व होकर के आता है, पर एक अपनत्व नहीं हो तो भी आता है। कहां तक? पंचम गुण स्थान तक आता है, छठे गुण स्थान से नहीं आता। उठो छठे गुण स्थान में उतनी आत्मस्थिरता बढ़ती है कि मैं देह का उपचार कर सकता नहीं, ऐसे अवस्था में ऐसे भाव में आत्मा स्थिर हो जाता है। तो उनको देह का उपचार करने का विकल्प भी नहीं आता है। उपचार तो करने का सवाल नहीं है, उसको विकल्प भी नहीं आता है। उसको तो विकल्प नहीं आता है, मुनिराज को तो विकल्प नहीं आएगा कि मैं देह का उपचार करूं, उसमें रोग हुआ है। लेकिन कोई उपचार करेगा तो वो स्वीकार भी नहीं करेगा, उद्देश्य का हार नहीं देते। अनजाने में कोई हार दान दे दो, हार दान में औषध दान दे दो, अलग बात है। तो व्यवस्था किसी की स्वीकार करते हैं नहीं। तो यहाँ तो मनुष्य की भूमिका है, चौथा संस्थान भी नहीं आया, अभी तो पहले संस्थान में है मनुष्य। तो उनको जो एकत्व है वो एकत्व को मंद कर देना है, शिथिल कर देना है, एकत्व का रस तोड़ देने का है। मुमुक्ष की भूमिका में एकत्व का रस गल जाएगा तो एकत्व का छूटना होगा और चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त होगा। इसलिए देहाभ्यास से नया देह मिलता है ऐसा हमको अगर मुमुक्ष की भूमिका में समझ में आया तो हमको देहाभ्यास नहीं हो ऐसे दृढ़ता आनी चाहिए। तो देहाभ्यास हमें नहीं करना, इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बीमारी आई तो हमको दवा नहीं लेनी है तो ठीक है, नहीं मत लो, प्रयोग करने में बाधा नहीं है। लेकिन प्रयोग कहां तक करना? परिणाम गे नहीं सार्थक करना है। प्रयोग करने से परिणाम सुधरना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। फिर भी प्रयोग करने पर प्रयोग बिगड़ता है परिणाम, तो वो प्रयोग छोड़ देना अच्छा है, क्योंकि आखिर में हमको मतलब है हमारे परिणाम के सुधारने का, बिगड़े नहीं वही हमारा प्रयोजन है। कोई मनुष्य प्रयोग करता भी है, कोई नहीं भी करता है, लेकिन एकत्व को मिटाना है ये दृढ़ता आनी चाहिए। फिर जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा जन्म मरण हो गया ऐसा करना ही नहीं, ऐसा दृढ़त्व दृढ़पना, दृढ़त्व मैंने दृढ़पना आत्मा में प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होता है। मैं ऐसे दृढ़ता करता हूँ ऐसा नहीं लिखा है, राग करता हूँ दृढ़ता का ऐसा नहीं लिखा है, जन्म मरण के प्रति द्वेष हो गया ऐसा भी नहीं लिखा है। जन्म मरण नहीं हुए ऐसे मेरे परिणाम हो जाने चाहिए, और उसकी दृढ़ता अंतर आत्मा में से प्रकाशमान हुई है, आत्मा में से दृढ़ता आई है। दृढ़ राग नहीं, दृढ़ द्वेष नहीं, आत्मा में से दृढ़ता आई है। परंतु अभी परंतु करके क्या लिखते हैं, परंतु कितने ही निरुपायता है, कितने निरुपायता है माने कि अभी अभी नहीं है, निरुपायता है। संयोग में रोग होने से दवा नहीं ले वो चले जाने, परिवार वाले जितने भी अपने देह के प्रति राग वाले होंगे तो जबरदस्ती करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको दवा लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलता। आप कुछ ठीक नहीं हो तो सबको सबके आपको तकलीफ नहीं होगी लेकिन हमको तकलीफ होती है, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि परिवार वालों को स्वजन मित्र आदि को राग होता है, उतना ही नहीं सर्वसंग परित्याग करके जाना है तो उतनी स्थिरता चाहिए, उतनी वितरागता चाहिए और उसके अनुकूल परिस्थिति बाहर में भी चाहिए, वो भी नहीं है। कितनी निरुपायता है, मैंने वो कुटुंब परिवार में फंसे हुए थे, 23 साल की उम्र है, शादी हुआ दो तीन साल हुआ था और व्यवसाय में भी 3 साल से जुड़े हुए थे, कई प्रकार की उपाधियां भर रही थी। अब उनको एक झटके में उसको फेंक दे ऐसी परिस्थिति न परिणाम की थी, न बाहर में कोई भी ऐसी परिस्थिति अनुकूल भी थी कि ऐसा करे तो किसी को भी अन्याय नहीं होगा, ऐसा नहीं था। तो आप किसी के प्रति अनुकंपा छूट जाएगी ऐसा भी बनने वाला था। बाह्य परिस्थिति में पूर्व प्रारब्ध के कुछ बंधन ज्ञानी को भी होते हैं, अभी तो मोक्ष दशा है, लेकिन बंधन ज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी को क्या अघाती कर्म का बंधन तो वितराग को भी होता है, जैसे कि सिद्ध अवस्था है वो विदेही अवस्था है, लेकिन आयु शहर रात तक अर्यंत को भी देह छूटता नहीं है, तो देह का बंधन है कि नहीं है, आयुष्य का बंधन, आयुष कर्म का बंधन है कि नहीं है, तो उसमें निरुपाय है कि उपाय है, उसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय है उसमें। हाँ ठीक है, तो आयुगा कितना मंथन चला है वो आएगा, करते हैं, मेरे उपाय का है तो कैसा मंथन चलता है, तो वो तो अपना मंथन तो प्रस्तुत करते हैं। प्रतिबंध नहीं है, बंधन है। प्रतिबंध अलग चीज है, बंधन अलग चीज है। प्रतिबंध तोड़ चुके हैं लेकिन फिर भी बंधन रहता है, वाणी को भी बंधन में रहना पड़ता है, तो निरुपायता है। वहां क्या करना कि बंधन है फिर भी क्या करना, तो अंदर से क्या कहा जाता है कि जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना। बंधन है इसलिए शिथिलता है, यानी हिम्मत नहीं है, अभिप्राय में मचक नहीं है, क्या परिणाम में थोड़ी कमजोरी हो सकती है, अभिप्राय में नहीं, प्रवृत्ति में एडजस्टमेंट हो सकता है, अभिप्राय में नहीं। अभिप्राय तो जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, पूर्ण करना उतना ही नहीं अवश्य पूर्ण करना, यही रतन है। हमारा रतन तो हमारे अभिप्राय अनुसार चलता है, माने हमारा अभिप्राय जो है तो सतत एक सा रहता है कि जो दृढ़ता है उसको पूर्ण करो, जो दृढ़ता है उसको पूर्ण करो, वही रतन रहता है। परंतु फिर परंतु आया दूर, फिर परंतु आया दोबारा, परंतु जो कुछ आगे आता है क्या उसे एक और करना पड़ता है, अर्थात अर्थात आगे आता है उसको खिसकाना पड़ता है और उसमें काल व्यतीत होता है। क्या करता है हम प्रयत्नशील हो, हम इसलिए नासीपास होकर के निष्प्रयत्न नहीं होते, प्रयत्नशील है, और हमारे मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो कोई आगे आते हैं उसको हम दूर करते हैं, खिसकाते हैं, लेकिन दूर करने में और खिसकाने में भी काल व्यतीत होता है तो हमको पोसाता है जो भी पूर्व कर्म के उदय अनुसार जो भी प्रवृत्ति है उसको छोड़नी है तो उसमें कई प्रकार के उदय आ जाते हैं, सामने जोर से उदय आते हैं। देखिए जीव ने भूतकाल में संसार में ऐसे रस लेकर के प्रवृत्ति किया है और ऐसे ही कर्म बंधन किया है तो उसको संसार में भटकना पड़े। जब कोई जीव उस संसार से मुक्त होने के लिए जब तैयार होता है तब उसमें जो जो सांसारिक रस की प्रवृत्ति से जो कर्म बंधा है वही उदय में आएगा, जोर से उदय में आएगा। अगर जीव उसमें अपना प्रयास से निष्फल होता है तो हमें उसके लिए हार जाता है, तो संसार में रुलता है। अगर साहस करके हिम्मत करके दृढ़ता रख करके आगे बढ़ता है, भले जो आगे उसको किसान में दूर करने में समय जाता है लेकिन आगे बढ़ता है तो हमें इसके लिए जीत जाता है, फिर हमारा नया कर्म बंधन उसको भटकाने के लिए होगा नहीं। और उसमें क्या काल व्यतीत होता है और जीवन चला जाता है, क्या चला जाता है, काल चला जाता है, हम नहीं लिखते हैं, हमारा महंगा जीवन चला जाता है। तेईस साल की उम्र में कभी युवानी का प्रारंभ हुआ है, गृहस्थी का भी प्रारंभ किया है, व्यवसाय व्यापार धंधा का भी प्रारंभ किया है पर वो खटकता है कि हमारा महंगा जीवन ऐसी सांसारिक प्रवृत्ति में क्यों हमको खर्च करना, जो जीवन आत्म कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए वही जीवन हमको संसार की प्रवृत्ति के लिए खर्च करना पड़ता है, हमको घुसाता नहीं है, अखरता है, बिल्कुल अखरता है। हमने गुजरा तो मैं खटके स्वयं के जब आंख में छोटा सा कण पड़ता है तो अखरता है, खटकता है, पर जहां तक वो निकलता नहीं है वहां तक चैन पड़ता है। कभी ऐसा होता है ये तो छोटा सा कण है, रहने दो ने, इतना बड़ा आंख है इसमें दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है, रहने दो ने बेचारा तो नहीं, सो कितना भी छोटा है लेकिन निकलेगा नहीं वहां तक चैन पड़ेगी। वैसे जो ज्ञानी होने वाला मुमुक्षु जी है, उत्कृष्ट कोटि का मुमुक्षु जी है, उनको अपना दोष खटकता है, उनको अपने संसार के लिए समय शक्ति खर्चना पड़ता है, वो उसको खटकता है। मेरा महंगा जीवन में ये फालतू के कार्य में वृथा परिश्रम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वृथा परिश्रम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या मिलता है आत्मा में, क्या मिलता है, संयोग की इनाधिकता होता है आत्मा में, क्या इनाधिक होता है, कुछ नहीं होता आत्मा में, तो खटकता है। वो तो बहुत छोटी उम्र में सचेत हो गए, उनको तो 15 साल की उम्र पहले पहले लग गया कि हमको संसार में रहना छोड़ दिया कर, और 18 साल की उम्र में समय दर्शन समय ज्ञान की प्राप्ति कर दी। देखो उस समय काल व्यतीत होता है जीवन चला जाता है, काल व्यतीत होता है तो जीवन चला जाता है ऐसा लगता है, बहुत महंगा जीवन मेरा पड़ा जाता है। उसे न जाने बिना क्या मंथन चलता है, उसे न जाने बिना नहीं जावे ऐसा कोई हमको प्रयास करना चाहिए, जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र हमको हमारा काम कर लेना चाहिए, मैंने अभी अभी हमको हमारा काम कर लेना चाहिए। जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक ऐसी दृढ़ता है, जहां तक हमको सफलता नहीं मिलेगी हमारी दृढ़ता में कोई फर्क पड़ने वाला। हमारी दृढ़ता और बढ़ती जाएगी, जैसे पानी नहीं मिलने से प्यास बढ़ती जाती है, क्या होता है पानी नहीं मिलने से क्या होता है, प्यास बढ़ती जाती है। वैसे हमारी आत्म प्राप्ति की जिज्ञासा है तो जहां तक विजय जय नहीं होगा सफलता नहीं होगी, हमारी दृढ़ता और तेज हो जाएगी। ऐसी दृढ़ता है उसका क्या करना, क्या करना बहुत चिंता हो पड़ी है, तो क्या करना, करे क्या, अभी हमारी दृढ़ता हमको चैन लेने देगी समझ में नहीं आता, थोड़ा आश्वासन
हो रही है।
साक्षात कथा कर रही है, अंदर में से प्राप्ति नहीं हो रही है, बाहर में रस नहीं आता है उस दिन में, ये परिस्थिति में पर छटपटाहट रहती है। जैसे सुगानी जी की छटपटाहट को समझे तो उनको क्या हुआ कि इतना वर्तमान परिस्थिति में छटपटाहट चली तो ऐसा लगने लगा कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, उतनी वेदना में आए कि मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऐसे अंतिम कोटि की छटपटाहट है, कैसे एक्सट्रीम पॉइंट आता है वो छटपटाहट का, कि उसको जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तब फिर उसको ज्ञान दशा आए बिना रहते तो मैं मिथ्या तो टिक सकता नहीं, अज्ञान टिक सकता नहीं, ये नियम से बात है। कदापि किसी तरह उसमें से कुछ करे मैंने त्याग कर दे, घर का दुकान का त्याग करके निकल जाए, कुछ कर ले, चलो हमको ये राज वाले संसार में रहना ही नहीं है, चलो हम निकल जाते हैं, तो वैसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर रहे, कहाँ जाएंगे फिर छोड़ करके जाएंगे कहाँ, क्यों कि हमको आत्मकल्याण हो ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई गुरु, ऐसी कोई जगह मिले तब तो आगे छोड़ करके कहाँ जाएंगे। लिखा है अर्थात, इसका अर्थ लिखा है कि वैसे संत कहा है कि जहाँ जाकर इस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें। पहला विचार वो आया है, ऐसा नहीं विचार आया कि हम घर छोड़ करके जंगल में जाकर के आत्मा में लीन हो जाए, वो बन सकता नहीं, मनुष्य की भूमिका है, तो उनके लिए गुरु चाहिए, ज्ञानी चाहिए। तो वर्तमान में नजर लगाने से, दौड़ाने से ये पता चला कि कहीं भी कोई ज्ञानी दिखने में आता नहीं है कि जिसके चरण में बैठकर हम हमारा आत्मकल्याण कर ले, हमारी अंतुष्टि मिले, पोषण मिले, ऐसा कोई संत ज्ञानी है नहीं, ऐसा कोई स्थान है नहीं, हम छोड़ करके भी क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति है तो फिर अब क्या करना, देखो और मन क्यों चलता है, तो जब ऐसी परिस्थिति में है तो क्या करना, तो दृढ़ता कैसे होती है उसका चितार अब आता है, कि कैसे दृढ़ता हुई। इस कृपालु देव ने अपने अनुभव की बात लिखी है, दृढ़ता के अपने परिणाम मुमुक्ष की भूमिका में जैसे हुए थे तो लिख दिए हैं। लिखते हैं कि चाहे जो हो, चाहे जो हो यानी कि चाहे जितना दुख सहो, हमें दुख के प्रतिकूलता की कोई परवाह नहीं है, चाहे जितने परेशान सहन करो, कुदरत की आपत्ति को परिश्रम कहते हैं, चाहे जितना परिश्रम आ जाए हम सहन कर लेंगे, चाहे जितने उपसर्ग सहन करो, कोई प्रतिकूलता देंगे, मनुष्य कृत, देव कृत और पेरियंस कृत, तीन प्रकार के प्रतिकूलताएं आती हैं, कोई भी आ जाए उसको उपसर्ग कहने में आता है। क्या कोई प्रतिकूलता देता है उस प्रतिकूल प्रसंग को उपसर्ग बोलने में आता है, कोई कितना भी उत्सर्ग हमको करे हमें परवाह नहीं है, हमें हमारा आत्मकल्याण करना ही है। चाहे जितनी व्याधियां सहन करो, शरीर का रोग कोई कितना भी आ जाए, इसकी भी हमें परवाह नहीं है। चाहे जितनी उपाधियां आ करो, उपाधि हो जाए ऐसी ऐसी परिस्थिति हो जाए कितनी भी, तीन प्रकार के जो प्रतिकूलता है उसमें से कुछ भी आ जाओ, हमें इसके प्रकार यानी कि अनेक प्रकार की प्रतिकूलता आ जाए तो भी हम हमारे आत्मकल्याण के निर्धारण से डिगने वाले तो मनुष्य दशा की देवता है। चाहे तो जीवन काल एक समय मात्र हो, चाहे तो आयु भी हो, बाकी कोई परवाह नहीं, पर दिल दूर निमित्त हो, यानी निमित्तों को देव गुरु शास्त्र नहीं भी हो, कुछ भी हो, दशा के पहले मनुष्य तो होती है, हो सकती है क्या, तो होती ही है। जो सिद्ध पर होने वाला है, मनुष्य को मिलने वाला है, उसका नींव का पत्थर कौन है, किस प्रकार की दृढ़ता है, केवल ज्ञान आदि जो मोक्ष दशा है तो मुनि दशा आने के बाद होती है। मुनि दशा सम्यक दर्शन आने के बाद होता है ना, और सम्यक दर्शन स्वरूप की पहचान होने के बाद होता है, और स्वरूप की पहचान सत्पुरुष की पहचान होने के बाद होती है। पर स्वरूप सत्पुरुष की पहचान कब होती है कि ऐसी दृढ़ता आती है तब होती है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम सत्पुरुष को कैसे पहचाने, लेकिन हम दृढ़ता कैसे करें वो तो देखो, दृढ़ता का तो कोई ठिकाना नहीं, पर हमको ज्ञानी की पहचान करना है और आत्मा की पहचान करना है और हमको अनुभव करना है। अनुभव कैसे हो, दृढ़ता का क्या है, एक छोटी मोटी बात बनती है तो आत्मकल्याण का साधन भूत सत्संग गौण हो जाता है, कहां से काम होगा, ऐसे काम होने वाला नहीं है। ये जो दृढ़ता के परिणाम लिखे हैं उसका टोटल यह है कि हमको हमारा सिद्ध पद रूप आत्मकल्याण है तो किसी भी कीमत पे लेना है, क्या किसी भी कीमत पे लेना ही है। हमारी यहाँ उछाणी होती है, उछाणी होती है क्योंकि हाथी पर बैठने के उछाने, तो ऐसे हाथी पर घोड़ा पर गाड़ी में कहीं भी बैठना हो तो कितनी कीमत लगे, मामूली कीमत लगे, तो उछाने में उछाने लेने वाले में तो कोई भी कीमत लगे हमको लेना ही है, लेते कि नहीं लेते, हाँ लेते नहीं है। आप तो कभी बोलते ना, तो आप तो कम एक मिनट उतारेंगे उसमें कितना भी जलेगा, हाँ सारा ना आठा ना था, रुपया दो रुपये का और बी के पास कितना बोलेंगे, सैकड़ों हजारों बोल देंगे। इसका मतलब क्या है, संसार में 100 रुपये की चीज 100 रुपये में खरीदी जाती है ना, तो 100 रुपये का भार है उस चीज का, 100 रुपया ले लो उनको चीज दे दो। लेकिन जिसको 100 रुपये की चीज 1-2 रुपये में लेनी हो, उसको खरेखर चीज खरीदने का नियत नहीं है, 1-2 रुपये में मिल सकती हो क्या,
नहीं मिले।
और 100 रुपये की चीज 1000-1000 तो भी हमको लेनी है तो लेकर रहेगा, कितना भी लग जाए हमको ये चीज चाहिए। अब हमको देखना है कि सिद्धपुर की कीमत कितनी, कि सारा जगत बिक जाए, हाँ एक सिद्धपुर के आगे सारा जगत बिक जाए तो भले ही बिक जाए, सिद्धपुर का मूल्यांकन हो सकता। ऐसे संसार की अनुकूलता में भी हमें फंसना नहीं है और प्रतिकूलता से घबरा करके हमें हमारे मार्ग को छोड़ना नहीं है। सारे संसार को गौण कर सकता है, वही सिद्ध को प्राप्त करता है। उसको सच्ची मनुष्यता आती है, उसको सत्पुरुष की पहचान होती है, उसको आत्मस्वरूप की पहचान होती है, उसको आत्मस्वरूप का अनुभव होता है, उसको मुनि पद आता है, उसको केवल ज्ञान होता है। ये पूरा जितना भी कंस्ट्रक्शन है सिद्ध पद का, उसका नींव का पत्थर कितना मजबूत है, ये फाउंडेशन का स्टोन है। सच्ची मुमुक्षुता और सच्ची दृढ़ता, यही सिद्ध पद का नीम का पत्थर है। ये पत्थर इतना मजबूत होता है कि मामूली बात होती नहीं। वैसे मुमुक्षु दशा तो ज्ञान दशा भी किसी भी नीचे की दशा है, फिर भी है नीम का पत्थर। अगर ये कमजोर होता है तो सिद्ध पद आता, एक भी ऊपर की दशा नहीं आती, आखिर में सिद्ध पद भी नहीं आता। इसलिए यहाँ कृपालु देव ने सिद्ध पद का पत्थर कितना मजबूत होता है, सिद्ध पद के नीम का पत्थर कितना मजबूत होता है, इसका बिल्कुल प्रदर्शन किया है, दिखा दिया है कि हमको हमारा मोक्ष पद, क्योंकि मोक्ष का पूर्णता का लक्ष्य करता है, पूर्णता का मानता है, मोक्ष का ध्येय मानता है, तो हमको हमारे ध्येय में किसी भी कीमत पर पहुंचना है। कोई भी कीमत लग जाए, एट एनी कॉस्ट हमको करना ही है, क्या है, परंतु ऐसा करना ही है, करना ही, तब तक ये जीव छुटकारा ऐसा दृढ़ विचार होता है, इसके बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। इतनी दृढ़ता आएगी तो मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए मुमुक्षुता का प्रारंभ होगा। इसका प्रारंभ होगा पूर्णता का लक्ष्य में मुमुक्षुता की शुरुआत में, पूर्णता के लक्ष्य में मुमुक्षुता की शुरुआत है। मोक्ष मार्ग क्यों नहीं है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होती है, पूर्णता के लक्ष्य में तो मुमुक्षुता की शुरुआत है। इस प्रकार नेपथ्य में से उत्तर मिलता है, नेपथ्य में से, अंतरात्मा में से इस प्रकार की दृढ़ता का उत्तर मिलता है और वो यथा योग्य लगता है, वो सही लगता है। उत्तर आत्मा में से मिलता है और समाधान भी आत्मा में से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अंतर आत्मा में से भाव उठता है उसको अंदर से ही समाधान मिल जाता है। खुद शास्त्र के साथ ज्ञानी के वचन के साथ पहली होता है, लेकिन अंदर से पहले समाधान आ जाता है कि मेरी दृढ़ता यथार्थ है। हमारे कल रात्रि चर्चा में प्रश्न आए थे कि हमको दृढ़ता है वो यथार्थ है वो कैसे मालूम पड़े, अंदर से मालूम पड़ेगा, बाहर पूछने की जरूरत रहेगी नहीं, अंदर से मालूम पड़ जाएगा। गुरुदेव कहते थे, कभी कभी प्रवचन में ऐसी बात करते थे, ये बात मोक्ष की और आत्मा के कल्याण की ऐसी सुंदर बात है कि जो पात्र जीव होता है उनको तो उस बात में उतना रस आता है, इतना उत्साह आता है के साथ साथ उनके आत्मा में से मोक्ष के फणकार आने लगते हैं मनुष्य की दशा में, कि अब मैं परिभ्रमण करने वाला अब मैं छोड़ जाऊंगा, मेरा आत्मा अंदर से समाधान देता है, अब मुझे प्रसन्नता परिभ्रमण है, अल्पकाल में मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी। सब सुपात्रता में से अंदर से आत्मा की ऐसी आवाज आती है, उसको कहते हैं भनकारे, हिंदी में भी भनकारे कहते हैं, थरकार, रणकार, रणकार। इतना जो बात लिया है तो पूर्णता के लक्ष्य जिसको होता है उनको कितनी दृढ़ता होती है, जिसको वास्तविक मनुष्यता का प्रारंभ होता है तो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसका चित्र आया। अब इसका कुछ चिंतन और चिंतन है वो लिखते हैं। क्षण में पलटने वाली स्वभाव वृत्ति नहीं चाहिए, जो परिणाम वृत्ति में है, जो परिणाम का स्वभाव क्षण क्षण में पलट जाए, क्षण में राग, क्षण में द्वेष, जिस व्यक्ति पर राग करता है एक क्षण में उस व्यक्ति पर द्वेष कर लेता है, जरा भी अपने साथ मेल नहीं खाता है, द्वेष करने में देर नहीं लगती, क्षण में वृत्ति पलट जाती है। एक चीज अभी ठीक लगती है पर वही चीज हमको अपने अच्छे नहीं लगती, क्यों ऐसा हुआ कि एक क्षण क्षण में पलटने वाली जो स्वभाव वृत्ति है प्रकृति के परिणाम है तो हमको नहीं चाहिए, हम ऐसा नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहता है, एक सुख शांति के सदृश परिणाम, संभाव रूप परिणाम, शांति रूप परिणाम, वही हमें चाहिए। हमें क्षण क्षण में पलट जाए ऐसी प्रकृति वाला स्वभाव नहीं चाहिए, संभाव रूप शांत 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 शांत, बस वही हमको चाहिए। हाँ, निषेध आता है आत्मा को अंदर से, निषेध आता है कि हमको ऐसे पलट पलटा खा ले ऐसा परिणाम हमें नहीं चाहिए, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, अच्छा नहीं लगता। अमुक काल तक शून्य के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मैंने हमको विकल्प ही नहीं चाहिए, निर्विकल्प हो जाए, शांत शांत निर्विकल्प हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, मन के संकल्प विकल्प भी हमें नहीं चाहिए। अस्पष्ट समझ सत्संग में मैं आता हूँ जरा कन्वे कर ले क्या क्या है कि अभी इतने हम विकल्प से थक गए हैं, क्या कहते हैं इधर कि विकल्प से थक गए हैं तो हम तो कुछ काल तक हमको शून्य हो जाना है। विकल्प से शून्यता क्या, ये जो शून्यता चाहते हैं तो विकल्प से शून्यता चाहते हैं, ये बात है इधर। जब ये पूर्णता का लक्ष्य होता है तो संकल्प विकल्प प्रतिबंध नहीं है, लेकिन विकल्प से भी थक गए हैं। विकल्प की धारा चलती है ना, उसके उसमें भी थकान आती है, तो भावना ये होती है कि एक दफे तो ये संकल्प विकल्प शून्य हो जाए तो अच्छा है, ऐसा अनेक प्रकार के संकल्प को छोड़ देता है, लेकिन विकल्प चालू रहता है, वो बात ठीक है। अच्छा, अगर वह न हो तो, अगर ऐसी निर्विकल्पता नहीं आई तो अमुक काल तक संत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। एक सत्पुरुष मिल जाए तो इसके चरण में हम बैठ जाए, हम तो निर्विकलता नहीं हो तो संत चरण मिल जाए तो भी हमको चलेगा। अनुप काल तक सत्संग के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो फिर कोई रुचिवान मनुष्यों का संग मिल जाए, आत्मकल्याण का ध्येय हो, ऐसा कोई मनुष्य हमें मिल जाए तो हमारा हमको थोड़े हम बर्दाश्त कर सकेंगे, वर्तमान परिस्थिति को हम बर्दाश्त कर सकेंगे, वरना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। थोड़ी राहत मिलेगी, सत्संग मिलेगा तो थोड़ी राहत मिलेगी, राहत उनका कहते हैं रिया के साथ तो आर्याचरण। सत्संग भी न मिले तो आर्य पुरुषों के द्वारा किए गए आचरण के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो हमको सदाचरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सत्संग नहीं मिले तो हमारा जीवन सदाचरण में रहो, और वह न हो तो जिन भक्ति सदाचरण भी नहीं हमारा हो तो हमको सदाचरण को प्राप्त कराए, ऐसे जिन भक्ति में अति शुद्ध भाव से लीनता के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अकेली जिन भक्ति नहीं लिया है, अति शुद्ध भाव से लीनता हो जाए हमारी जिन भक्ति में। भगवान जिनेन्द्र के गुणानुराग में हमारी लीनता हो, वो भी शुद्ध मन से। शुद्ध मन से का मतलब क्या है, निष्काम भक्ति हो, सकाम भक्ति नहीं हो, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। और हो तो फिर मांगने की इच्छा भी नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर उतना ही हमारा परिणाम नहीं चले जिन भक्ति में भी निष्काम बने से, तो फिर हमारा कोई परिणाम का ठिकाना नहीं, क्या मांगना, तो मांगने की योग्यता भी हमारी नहीं है, क्या मांगे, फिर योग्यता भी नहीं है, मांगने का भी अधिकार तो होना चाहिए ना, फिर हमारा मांगने का तो अधिकार रहता नहीं है। बहुत बढ़िया बात किया, हाँ उत्तर पाठ ये नहीं होता ऐसा परिणाम हो, ये नहीं होता ऐसा परिणाम हो, ये नहीं होता ऐसा उत्तरता कर दिया। संत चरण के बदले निमिकम दशा आत्मशक्ति की दशा है, वो नहीं है तो बाद में ज्ञानी पुरुष का चरण मिल जाए तो उनको शांति रहेगी। ऐसा ये विकल्प तुम हमारा पीछा छोड़, या तो अगर तुमको हमारा पीछा नहीं छोड़ना है तो हमको श्री गुरु के चरण में ले जाओ। अगर ऐसा भी तू नहीं करेगा तो श्री गुरु ने दिया हुआ शस्त्र तेरा घात कर डालेगा, तुमको तुझे मार डालेगा, तेरा नाश कर देगा। तुम्हें ताकत थे पुरुषार्थ में ताकत कि पुण्य योग से सत्संग गुरु का नहीं मिलेगा तो हमारा पुरुषार्थ ढीला तो नहीं होगा, शिथिल तो नहीं होगा, लेकिन फाट फाट होकर के निर्विकल दशा को ले आएगा। ऐसा अंदर से जोर आता वह फिर पुरुषार्थ था। आगे कुछ सूत्र जैसे वचन लिखे हैं कि समझ में आए बिना आगम अनर्थ कारक हो जाते हैं। गम बिना, गुजराती में गम शब्द कैसे, सहज शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, गम के स्थान में बराबर नहीं है। गुरु गम तो हमारे गुजराती में इस शब्द का प्रयोग बहुत बढ़िया है, जैसे कोई को काम कोई काम करने की टेक्निक नहीं आती है, तो काम करने में उसका हाथ नहीं बैठता हूँ, तो काम करने का प्रयत्न करता है लेकिन कर सकता नहीं है तो क्या बोलते हैं, उसको काम करने की कोई गम नहीं है इसलिए काम बिगड़ जाता है, गम नहीं है ऐसा कहते हैं। आलोक एबिलिटी यानी निपुणता, निपुणता तो ऐसे योग्यता के बिना, यथार्थ योग्यता के बिना आगम अनर्थकारक, आगम अनर्थकारक हो जाते हैं। क्या उल्टा पड़ेगा, आगम है वो तो सचन का पोषण कर लेगा, आगम पढ़कर के सचन का पोषण हो जाएगा तो नुकसान का कारण बन जाएगा, अनर्थकारक माने नुकसान। और सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है। आजकल लोग ध्यान करने को बैठ जाते हैं ना, ध्यान के केंद्र में जाते हैं, ध्यान के शिविरों में जाते हैं, या कुछ लोग ध्यान कराते हैं उनके पास ध्यान करने के लिए जाते हैं, तो ध्यान करने का सही रास्ता नहीं है। पहले सत्संग करो, सत्संग में आत्मस्वरूप को समझो, आत्मस्वरूप ज्ञान में आए भाव भाषण में आने के बाद ध्यान होता है। जो चीज ज्ञान में नहीं आई उसका ध्यान कैसा, ये तो कल्पना है, ज्ञान नहीं है तो कल्पना विहार होगा, मिथ्या तो दृढ़ हो जाएगा, क्या होगा मिथ्या तो दृढ़ हो जाएगा। सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप होता है, ज्ञान में देखेंगे अनेक प्रकार के विचार के तरंग चलेंगे, ज्ञान ज्ञान होगा। सत्संग के बिना ध्यान तरंग रूप हो जाता है, संत के बिना अंत की बात का अंत नहीं पाया जाता। कैसा एलिटरेशन दिया है, संत के बिना मैंने ज्ञानी पुरुष के बिना संसार का अंत की जो बात है, मोक्ष की बात क्या है, संसार का अंत की बात है, उसका अंत मैंने उसका गौतम कर लिया, मूल में से वो बात समझ में आएगी नहीं। क्या कह दिया एक वचन में, तो जिसको संसार से छूटना हो उनको ज्ञानी पुरुष के बिना उस बात का पता लगने वाला कोई शास्त्र पढ़ करके किताब पढ़ करके मोक्ष का मार्ग मिल जाए ऐसा बनता है, क्योंकि शास्त्र में मार्ग कहाँ है, लेकिन मार्ग का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में रहा है। परमार्थ की जो संकल्पना है, परमार्थ की जो संकल्पना है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग वो है, तो वो ज्ञानी के हृदय में उसकी कैसे प्राप्त करने है इसकी बात उसके हृदय में रही है। निश्चय में निश्चय की मूल बात ज्ञानियों के हृदय में रही है। इसलिए इसके पास से वो बात मिलती है, सिद्धि कभी किसी को मिलती नहीं है। लोक संगना से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता, जो समाज की बात मुख्य करता है अपने को हार्ट अटैक आता है ना, तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, नाई के पास नहीं जाएंगे, या हम समाज को इकट्ठा नहीं करेंगे कि भाई समाज को बुलाओ हमारे घर पर, हमको हार्ट अटैक आया, बोलो हमको क्या करना चाहिए, हाँ समाज के बड़े बड़े लोग हमको समझाओ हमको क्या करना चाहिए, हाँ तो सीधा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, वो भी अच्छे से अच्छा। हाँ तो आत्मा का जो भव रोग है तो हार्ट अटैक से कोई गंभीर है या इससे छोटा है, तो इसके लिए समाज के पास जाना कि समाज क्या कहेगा। हाँ ये संसार से मुक्त होने की कला समाज के पास नहीं है। समाज में तो स्थूल बुद्धि से सब रूढ़ी रिवाज चलता है, जिसमें लगता है कि अक्ल ही नहीं है ऐसी बात चलती है, ऐसे तो समाज की क्या राय लेना, तो उसकी कोई राय लिया जाता नहीं है। तो लोक संगना मैंने समाज की राय लेकर के धर्म करना, समाज को अच्छा लगे ऐसा धर्म करना, समाज में गड़बड़ में हो तो धर्म करना, समाज में गड़बड़ हो तो बात छोड़ देना धर्म के, और क्या करे कि हमारे सगे समझे इसके बीच में हमको रहना पड़ता है। मर करके दुर्गति में जाएगा तो इसके बीच में कहां से रहेगा, रहेगा इसके बीच में, पर यहाँ से दुख छुड़ाने के लिए कोई समाज आने वाली नहीं है, तो अपना नसीब लेके आए हैं, बिक्रा बिक्री अपने नसीब के अनुसार सबका होता है, हम करते हैं वो मात्र अभिमान के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे लोक संगना से लोकाग्र में नहीं पहुंचा जाता, लोक त्याग के बिना वैराग्य यथायोग पाना दुर्लभ है, लोगों का ज्यादा संग बढ़ाना और वैराग्य भी होना वो बात बनने वाली नहीं है। इसको वैराग्य यथायोग्य वैराग्य की प्राप्ति होती है तो लोगों का त्याग कर देता है, भले लोग इनकी प्रशंसा करें, भले लोग इसकी भक्ति पूजा करें, लेकिन वो लोग का त्याग कर देगा, आपके संग में रहना नहीं है। यह कुछ झूठा है क्या, प्रश्न उठाता है कि यह सब कहा है वो झूठ है क्या, तो नहीं, ये परम सत्य है। परिभ्रमण किया सो किया और उसका प्रत्याख्यान ले ले तो, क्या परिभ्रमण नहीं करना है ऐसा कोई प्रतिज्ञा ले ले तो लिया जा सकता है, मुमुक्षुता में वो लिया जा सकता है। हाँ अंबर से ऊपर आता है, यह भी आश्चर्य कारक है, अंबर से ऊपर मिल जाता है, वो भी आश्चर्य कारक है। अभी इतना ही, अभी जो कहना है वो उतना ही कहना है, फिर कोई श्लोक से मिलेंगे तो ज्यादा कहेंगे या बताएंगे, ये विज्ञापन विनीत रायचंद के यथा युग इस प्रकार से पूर्णता का लक्ष्य कैसे होता है, किस प्रकार के परिणाम से होता है, दृढ़ता कितनी होती है, इसका चिता बात फल में नहीं बैठती है, कैसे नहीं बैठती, क्यों नहीं बैठती, क्या तकलीफ होती है, कौन सी बात नहीं बैठती है, तो अंदर से समाधान आता है किस प्रकार का और पूर्णता का वक्त।